किंग डेविड होटल बम विस्फोट। 22 जुलाई 1946 को किंग डेविड होटल यरूशलम में, जो उस समय ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन का हिस्सा था, एक भयानक विस्फोट से हिल गया जिसमें 91 लोग मारे गए और 46 घायल हुए। यह हमला इरगुन द्वारा किया गया, जो एक ज़ायूनी अर्धसैनिक समूह था, और होटल को निशाना बनाया गया क्योंकि वहां ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय, जिसमें सैन्य और खुफिया कार्यालय शामिल थे, स्थित था। यह बम विस्फोट क्षेत्र के आधुनिक इतिहास में सबसे विनाशकारी और विवादास्पद राजनीतिक हिंसा के कृत्यों में से एक बना हुआ है। जबकि इरगुन ने हमले को उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध के रूप में उचित ठहराया, आज की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र 1999 आतंकवाद वित्त पोषण सम्मेलन और प्रथागत मानवीय कानून के तहत यह आतंकवाद का एक कृत्य है, क्योंकि इसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर एक नागरिक भवन को निशाना बनाया गया था। पृष्ठभूमि, ब्रिटिश मैंडेट और बढ़ते तनाव। किंग डेविड होटल, 7 मंजिला चूना पत्थर का एक ऐतिहासिक भवन, एक विलासिता निवास और फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक केंद्र दोनों था। दक्षिणी विंग, जिसे सरकारी सचिवालय कहा जाता था, में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय और आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के कार्यालय थे। 1940 के दशक के मध्य तक यहूदी उग्रवादी संगठनों 1939 के श्वेत पत्र से निराश, जिसने यहूदी आप्रवासन और भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया, ने ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू कर दिया। हॉलोकॉस्ट ने यहूदियों के गृहस्थान सुरक्षित करने के संकल्प को और मजबूत किया, जबकि ब्रिटिश यहूदी और अरब मानवों के बीच फंसे सुरक्षा दमन पर अधिक निर्भर हो गए। यहूदी भूमिगत समूहों में इरगुन स्वाई लेओमी मेनाहेम बेगिन के नेतृत्व में ब्रिटिश लक्ष्यों पर प्रत्यक्ष हमलों की वकालत करती थी। बेगिन ब्रिटिशों को एक उपनिवेशवादी कब्जेदार मानते थे, जो यहूदी राज्य निर्माण में बाधा डाल रहा था। 1945-46 में इरगुन लेही, स्टर्न गैंग और मुख्यधारा हगाना के साथ यहूदी प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हुई। फिर भी यह गठबंधन अस्थिर था, क्योंकि हगाना नेता डेविड बेन गुरियन अक्सर अधिक उग्रवादी गुटों को रोकने की कोशिश करते थे। हमला, योजना, चेतावनियां और निष्पादन। अब डी क्लासिफाइड अभिलेख किंग डेविड बम विस्फोट की विस्तृत पुनर्रचना की अनुमति देते हैं। योजना जुलाई 1946 के प्रारंभ में शुरू हुई। इरगुन का उद्देश्य ब्रिटिश खुफिया फाइलों को नष्ट करना था, जिनमें वे मानते थे कि ऑपरेशन अगाथा के दौरान जब्त की गई ज़ायूनी गतिविधियों के सबूत थे, जो एक बड़े पैमाने पर ब्रिटिश छापेमारी थी जिसमें सैकड़ों यहूदी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इरगुन योजना और कमांड संरचना। नव रिलीज्ड इसराइली और ब्रिटिश रिकॉर्ड ऑपरेशन के प्रमुख व्यक्तियों की पहचान करते हैं। कमांडर मेनाहेम बेगिन। ऑपरेशन प्रमुख अमिचाई पगलिन, गिदी, विस्फोटक उपकरण का डिजाइनर। छद्म वेश टीम, 7 ऑपरेटिव अरबी गलाबिया, रॉब मे। निगरानीकर्ता यित्साक सादेह, हगाना संपर्क चालक इसराइल लेवी। 22 जुलाई की सुबह इरगुन ऑपरेटिवों ने 350 किलोग्राम जिलाटिनाई दूध के डिब्बों में छिपाकर ला रीजन्स कैफे के नीचे होटल के तहखाने में तस्करी की। फोरेंसिक विश्लेषण ने बाद में जिलाटिनाइट को हाइफा में ब्रिटिश ऑर्डिनेंस डिपो से चुराए गए विस्फोटकों से मिलाया। सीआईडी फाइल RG41/G3124। चेतावनियां, मिनट दर मिनट ब्रेकडाउन। MI5 फाइल KV534 और समकालीन गवाहियों से प्राथमिक साक्ष्य 3 चेतावनी कॉल की पुष्टि करते हैं। समय कार्रवाई स्रोत डैश 11:55 पूर्वाह्न पैलेस्टाइन पोस्ट को कॉल, यहूदी लड़ाके आपको किंग डेविड होटल खाली करने की चेतावनी देते हैं। पैलेस्टाइन पोस्ट लॉगबुक 11:58 पूर्वाह्न पड़ोसी फ्रेंच वाणिज्य दूतावास को कॉल, होटल में बम, तुरंत निकलें। फ्रेंच राजनयिक केबल 23 जुलाई 1946। 12:01 अपराह्न होटल ऑपरेटर को कॉल, यह हिब्रू अंडरग्राउंड है, तहखाने में दूध के डिब्बे आधे घंटे में फटेंगे। MI5 इंटरसेप्ट्स FF 112-118। हालांकि होटल स्विचबोर्ड ऑपरेटर, जो धोखे की कोलोन की आदि थी, ने चेतावनी को एक और यहूदी मजाक मानकर खारिज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सर जॉन शॉ, जब सूचित किया गया, कथित तौर पर बोले, इस सप्ताह हमें ऐसे 20 कॉल आए हैं। ब्रिटिश सैन्य तहखाने की तलाशी 12:15 पर केवल सार्वजनिक क्षेत्रों की जांच की, ला रीजन्स के नीचे सेवा गलियारा छूट गया। 12:37 अपराह्न पर विस्फोट ने दक्षिणी विंग को नष्ट कर दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि वह हिब्रू यूनिवर्सिटी सिस्मोग्राफ पर दर्ज हुआ, रिकॉर्ड, कार्यालय और जीवन नष्ट कर दिए। मानवीय क्षति 91 पीड़ित कई राष्ट्रीयताओं और समुदायों से थे। नाम, राष्ट्रीयता, भूमिका डैश जूलियस जेकब्स ब्रिटिश सहायक सचिव, मारा गया अहमद अबू जैद अरब हेडवेटर, ला रीजेंस। हाइम शापिरो यहूदी पैलेस्टाइन पोस्ट रिपोर्टर, यित्साक एलियाशर सेफार्दी यहूदी होटल लेखाकार, काउंटेस बर्नाडोट स्वीडिश रेड क्रॉस प्रतिनिधि घायल, 28 ब्रिटिश, 41 अरब, 17 यहूदी और 5 अन्य राष्ट्रीयताएं। पैलेस्टाइन गजट 1 अगस्त 1946 ने सभी नाम सूचीबद्ध किए हमले की अंधाधुंध प्रकृति को रेखांकित करते हुए। पीड़ितों में क्लार्क, पत्रकार, सैनिक और नागरिक शामिल थे, कई राजनीतिक संघर्ष में सीधे शामिल नहीं थे। तत्काल परिणाम अराजकता, निंदा और दमन। ब्रिटिश प्रतिक्रिया त्वरित और कठोर थी। 23 जुलाई यरूशलम में कर्फ्यू, 17,000 सैनिक तैनात। 26 जुलाई ऑपरेशन अगाथा के दूसरे चरण में सामूहिक गिरफ्तारियां। 31 जुलाई जनरल बार्कर ने ब्रिटिश सैनिकों को यहूदी व्यवसायों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया, बाद में नस्लवादी के रूप में निंदा की गई। अगस्त 1946 बेगिन की गिरफ्तारी के लिए 25,000 पाउंड इनाम की पेशकश। लंदन में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट से कहा, फिलिस्तीन रखने की लागत अब मैंडेट के मूल्य से अधिक है, कैप 128/6। यह सीधा स्वीकारोक्ति थी कि बम विस्फोट ने ब्रिटेन के फिलिस्तीन प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र को सौंपने के निर्णय को प्रभावित किया, विभाजन की ओर एक निर्णायक कदम। आंतरिक यहूदी प्रतिक्रियाएं और चेतावनियां। बहस एक, जब थगाना मेमो CZA-S25/1921 ने खुलासा किया कि डेविड बेन गुरियन ने 2 दिन पहले ऑपरेशन रद्द करने की कोशिश की, चेतावनी देते हुए बहुत सारे नागरिक मौजूद होंगे। हालांकि हगाना संपर्क मोशे स्नेह ने जवाब दिया कि योजना अपरिवर्तनीय है। इरगुन ने दावा किया कि चेतावनियां जीवन हानि से बचने की उनकी मंशा साबित करती हैं, लेकिन किसी भी उचित सैन्य या नैतिक मानक से, विशेष रूप से आज के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत जो असमानुपातिक नागरिक हानि की संभावना वाले हमलों को प्रतिबंधित करता है, ऐसी ऑपरेशन आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत होगी। मंशाओं से अलग गैर लड़ाकों से भरे नागरिक भवन को बम लक्ष्य के रूप में उपयोग आधुनिक सशस्त्र संघर्ष के मानकों से मेल नहीं खाता। वैश्विक और स्थानीय प्रतिक्रियाएं। अरबी अखबारों ने पूरे फिलिस्तीन में बम विस्फोट को यहूदी आतंक के रूप में निंदा की। फिलिस्तीन यहूदी आतंक ब्रिटिश अड्डे में 41 अरबों को मारता है। अल दिफा मौत का होटल। अल इतिहाद ज़ायोनी बम हमें निर्वासित करने की पहली कड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक कृत्य जो यहूदी कारण को नुकसान पहुंचाता है कहा, अमेरिका में ज़ायोनी फंडरेजिंग में 30% की गिरावट का उल्लेख। वेटिकन के ल ओसर्वातोर रोमानो ने बर्बर तरीकों की निंदा की। सोवियत प्रेस शुरू में चुप, बाद में इसे एंटी इंपीरियलिस्ट प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया। जवाहरलाल नेहरू ने टिप्पणी की कि ब्रिटिश जो बोते हैं वही काटते हैं, फिलिस्तीन की उथल पुथल को भारत में उपनिवेशीय अशांति से जोड़ते हुए। मुकदमे और दीर्घकालिक परिणाम। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1947 की शुरुआत में यरूशलम सैन्य अदालतों में कई इरगुन संदिग्धों का मुकदमा चलाया। 6 को मौत की सजा मिली, जो सार्वजनिक दबाव के बाद आजीवन कारावास में बदल दी गई। अन्य मई 1947 के एकर जेल ब्रेक में भाग गए। मेनाहेम बेगिन खुद गिरफ्तारी से बच निकले, 1948 में इसराइल की स्वतंत्रता के बाद क्षमादान प्राप्त किया। राजनीतिक रूप से बम विस्फोट ने ब्रिटिश वापसी को तेज किया। 1947 के मध्य तक सरकार ने स्वीकार किया कि वह फिलिस्तीन को प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना का पालन हुआ और 2 वर्षों में नवीनीकृत युद्ध के बीच इसराइल का जन्म हुआ। स्मृति, संशोधनवाद और निरंतर विवाद। 1948 से बम विस्फोट का विरासत विभाजनकारी बना हुआ है। 1966 इरगुन वेटरन्स ने होटल में एक प्लैक लगाई जो उनकी चेतावनियों को श्रेय देती थी और ब्रिटिश निष्क्रियता को दोषी ठहराती थी। 2006 ब्रिटिश राजनयिकों ने नई प्लैक समारोह का बहिष्कार किया, फिलिस्तीनियों ने इसे आतंक का महिमा मंडन कहा। 2016 इसराइली स्कूल पाठ्यक्रम ने इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक जो स्वतंत्रता को तेज करती थी के रूप में चित्रित किया। 2021 फिलिस्तीनी एनजीओ ज़ोक्रोट ने एक डिजिटल स्मारक लॉन्च किया जिसमें सभी 91 पीड़ितों, जिसमें अरबी स्टाफ शामिल, को सूचीबद्ध किया गया। नैतिक और कानूनी मूल्यांकन आज के मानकों से आतंकवाद। जबकि इसराइल में कुछ हमले को उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध का एक हताश कृत्य मानते रहते हैं, आधुनिक परिभाषाएं कम अस्पष्टता छोड़ती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2004 की आतंकवाद की कार्य परिभाषा के तहत नागरिकों के खिलाफ हिंसा का जानबूझकर उपयोग सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए किंग डेविड होटल बम विस्फोट आतंकवाद के रूप में योग्य है। चेतावनियां जारी होने के बावजूद इरगुन ने जानबूझकर उच्च विस्फोटक एक कार्यशील नागरिक भवन में रखी, जो बाद में जिनेवा कन्वेंशंस और रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोडिफाइड सिद्धांतों का उल्लंघन है। हमले का उद्देश्य डर से ब्रिटिश वापसी को बाध्य करना, समकालीन कानून के तहत आतंकवादी कृत्य के हर मानदंड को पूरा करता है। विरासत और चिंतन। आज किंग डेविड होटल पुनर्निर्मित खड़ा है, उसके घाव आंशिक रूप से छिपे लेकिन कभी मिटाए नहीं। आगंतुक अभी भी इरगुन द्वारा स्थापित प्लैक पढ़ सकते हैं और पास में मृतकों को सम्मान देने वाला शांत स्मारक। बम विस्फोट के सबक दर्दनाक रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। चेतावनियां नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष नागरिकों को निशाना बनाने पर नैतिक पतन का जोखिम उठाते हैं। उपनिवेशीय संदर्भ हिंसा पैदा करते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी और आतंकवादी के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। पीछे मुड़कर देखें तो किंग डेविड होटल बम विस्फोट केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि गलत अनुमान और मानवीय लागत की त्रासदी था। इसने ब्रिटिश वापसी को तेज किया लेकिन प्रतिशोधी हिंसा के चक्र को भी गहरा किया, जो आज भी इसराइली फिलिस्तीनी संघर्ष को आकार देता है। समकालीन मानकों से यह एक आतंकवादी कृत्य के रूप में खड़ा है। एक कठोर याद की न्याय या राष्ट्र निर्माण की खोज कभी निर्दोष जीवन की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। संदर्भ 1. ग्रेट ब्रिटेन कैबिनेट ऑफिस कैबिनेट कंक्लूजन्स 25 जुलाई 1946 कैब 128/6 द नेशनल आर्काइव्स क्यू 2. ग्रेट ब्रिटेन मई 5 ईगन स्वाइलूमी इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस एंड वार्निंग कॉल्स जुलाई 1946 केवी 534 FF 112/118 द नेशनल आर्काइव्स क्यू 2006 3. इसराइल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन CID फोरेंसिक रिपोर्ट ऑन किंग डेविड होटल एक्सप्लोसिव्स 22 जुलाई 1946 RG41/G3124 इसराइल स्टेट आर्काइव्स यरूशलम 4. इसराइल हगाना आर्काइव्स इंटरनल मेमो वेन गोयन टू मोशे स्नेह 20 जुलाई 1946 S25/9021 सेंट्रल ज़ायोनिस्ट आर्काइव्स यरूशलम 5. मैंडेट फिलिस्तीन द पैलेस्टाइन गज़ेट नंबर 1515 1 अगस्त 1946 गवर्नमेंट प्रिंटर यरूशलम 6. संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म महासभा संकल्प /3/54/109 9 दिसंबर 1999 7. संयुक्त राष्ट्र Measures to Eliminate International Terrorism Working Group Report A/59/894/2004 8. Al-Difa, Jaffa Maut Ka Hotel 23 July 1946 9. Al-Ittihad, Haifa Zayoni Bomb, Hame Nirvasit Karne Ki Pehli Kadi 23 July 1946 10. Philistine, Jaffa यहूदी आतंक ब्रिटिश अड्डे में 41 अरबों को मारता है 23 जुलाई 1946 11. लसेविटोरे रोमानो वेटिकन सिटी फिलिस्तीन में बर्बर तरीके 24 जुलाई 1946 12. द न्यूयॉर्क टाइम्स यरूशलम में आतंकवादी विस्फोट 23 जुलाई 1946 13. संपादकीय एक कृत्य जो यहूदी कारण को नुकसान पहुंचाता है 24 जुलाई 1946 14. द पैलेस्टाइन पोस्ट यरूशलम होटल चेतावनी लोग 22 जुलाई 1946 आंतरिक स्विचबोर्ड रिकॉर्ड इसराइल स्टेट आर्काइव्स 15. बेगिन मेनाहेम द रिवोल्ट सैमुअल कार्ट्स द्वारा अनुवादित लंदन डब्ल्यू एच एलन 1951 16. क्लार्क थर्स्टन बाय ब्लड एंड फायर द स्टोरी ऑफ द किंग डेविड होटल बॉम्बिंग न्यूयॉर्क पुटनम 1981 17. खालिदी रशीद द आयन केज द स्टोरी ऑफ द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड बॉस्टन बीकन प्रेस 2006 18. मॉरिस बेनी 1948 अ हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट अरब इजरायली वॉर न्यू हेवन येल यूनिवर्सिटी प्रेस 2008 19. Sakeev, Tom. 1. Palestine, complete, Jews and Arabs under the British Mandate. Haim Bartzamen Dwara Anuvadit. New York, Metropolitan Books, 2000. 20. Then Hotels Archive. King David Hotel Reconstruction Photographs, 1946-1948. 15 October 2025 ko access kiya gaya. 21. Zokrot. King David Hotel Victims Memorial. GPS Nirdeshank ke saath Digital Database. 15 October 2025 ko access kiya gaya. 22. Imperial War Museum. Photograph Hu 73132, King David Hotel Ruins, the 23rd of July 1946. London. 23. Library of Congress. Matson Photograph Collection. King David Hotel, pre-1946 facade. Washington, D.C.